प्यारी सात संगत प्यार से बोलिए सात संगत आज पटौती में रामलीला मैदान में संतों का इकट्ठ देखकर बड़ी मन को प्रसन्नता हुई। संत जहाँ भी बैठ जाते हैं वो जगह भी सुहानी हो जाती है। कहा कि जैसे जिते जाए बे मेरा सतगुरु सो थान सुभावा, जहाँ महात्मा सतगुरु बैठ जाते हैं वो थान भी बड़े सुहाने लगते हैं। और इनका कैसे मिलन हुआ, जब जिज्ञासा लेकर सतगुरु के पास आए, सतगुरु ने रहम करम किया, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दिया। क्योंकि ये आत्मा जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई परमात्मा से अनेकों तन धारण करती है। जितने भी हमें जिया जंत पशु के रूप में आते हैं, नज़र परिंदा के रूप में आते हैं, धरती पे जो छोटे छोटे कीड़े भी रेंगने वाले चलते हैं, जितने भी ये तन हैं, इन तनों से धारण करती हुई मनुष्या तन में आती है। जब मनुष्या तन में आती है तो फिर जब पूर्ण महात्मा मिल जाते हैं तो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, फिर वो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। ज्योति से ज्योत मिल जाती है, जहाँ से ये बिछड़ी हुई ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण थी आराम। जैसे हम सुबह से निकले हुए घर से जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, बाजार में जाते हैं और कई स्थानों पे जाते हैं, जब रात को घर लौटते हैं तो कहते हैं सारा दिन चलते चलते थक गए, पर शुक्र है रात को घर में पहुंच गए, अभी आराम से बैठेंगे। इसी तरह फिर इस आत्मा को भी जब परमात्मा को जान लेती है तो इसको भी आराम मिल जाता है। तो आओ साथ संगत, नहीं तो इंसान की भटकन तो ऐसे लगी रहती है कि जैसे आप जानते हैं कि हिरन होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जब उसको खुशबू आती है तो वो भागता है, कभी झाड़ियों में कभी और स्थानों में भागता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, पर उसको नहीं पता कि मेरी नाभि से ही ये खुशबू आ रही है। इसी तरह इंसान भी ये भी भागता फिरता है, पर इसको नहीं पता कि नाल नारायण मेरे जमदूत नावत नेड़े। कहते हैं कि मेरे अंग संग बसने वाला ये राम नारायण जो है, ये तो मेरे अंग संग बस रहा है, पर मैं क्यों भाग रहा हूँ ये समझ नहीं आती। जब समझ देने वाला मिल जाता है महात्मा के रूप में, जब इसका इशारा मिलता है कि ये तेरी आत्मा है, ये परमात्मा है, जैसे कहा कि जिमी के जमा में समस्त एक ज्योत है, ना बाढ़ है ना काट है ना काट बाढ़ होता है, ऐसे ज्योति के दीदार करा देते हैं जो कम भी नहीं होती तो बढ़ती भी नहीं। तो आओ साथ संगत, अभी तक आपने संतों महापुरुषों के, चाहे वो बच्चे के रूप में चाहे सत्संग युवा के रूप में, चाहे भाषण में बात कही चाहे भजनों में कही, बात ही एक ही कही, इंसान को आवाज़ दी गई कि इंसान तू आयो ला लैन लगो कित फकड़े सा मुक्ति चली रहन। तू तो ला लेने के लिए आया पर और कामों में पड़ गया। तो आओ सत्संग इसको बार बार याद दिलाई जाती है, इसको मोह माया की नींद से जगाया जाता है कि मोह माया की नींद में इंसान इतना सो जाता है, इतना गाफल हो जाता है कि इसको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन से काम के लिए आया हूँ। जैसे सात संगत किसी बच्चे को कहें कि हम बाज़ार से कोई वस्तु लेके आ, अभी तो वो ज़माना नहीं रहा, पहले तो देखने में आता था कि जगह जगह वो कोई मदारी बैठे होते थे, कोई सांप लिए, कोई कबूतर लिए, कोई और कुछ लिए बैठे होते थे रास्ते में, तो बच्चे को भेजते थे कि जा कोई सब्जी, जा कोई और दाल, जा कोई वस्तु लेके आ, वो उधर ही मगन हो जाता था उसी का तमाशा देखने को। तो सास घर तो इंतज़ार होती रहती थी कि सब्जी आए तो हम बनाएं उसको। इसी तरह इंसान की भी हालत रंग रंगीली दुनिया में आके तमाशे में मोह माया में फंस गया, इसको असली काम ही नहीं याद रहा कि मैं किस काम के लिए दुनिया में आया, जो केवल इंसान ही कर सकता है। इंसान को ही ऐसा दिमाग, ऐसी समझ, ऐसी सोची मिली है कि यही प्रभु को जान सकता है। साध संगत अगर हम इधर देखते हैं कि शेर हम कहते हैं कि जंगल का राजा होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। हंस को भी हम कहते हैं कि इसकी चुंच में इतनी ताकत होती है, दूध पानी को अलग कर देता है। इसी तरह चंदन की लकड़ी भी, वो भी साध संगत पवित्र मानी गई और कितनी अच्छी मानी गई। इनको हम कहें कि आओ तुम्हें परमात्मा का ज्ञान दें, ईश्वर का ध्यान, उनको नहीं ये समझ में आती बातें। जो इंसान को ये बातें समझ आ गई तो आओ साथ से, हाँ जान बूझ गए जैसे ये ना सुनी अनसुनी कर दे, वो तो इसके हाथ में है। तभी कहा कि जान बूझ के बावरे तय काज बिगाड़ियो, कहा कि जान बूझ कर बावरा बावरा झल्ले को, जिसको समझ नहीं आती पागल भी हम कह देते हैं, कहते हैं तू जानबूझ कर ऐसे पागल बनकर, तू काज इतना अच्छा मौका तेरे हाथ में आया उसको तूने गवा दिया। इसी तरह सात संगत राजा जनक को एक दफ़ा चाहना हुई कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो मुझे सत और सत का निर्णय करके बता दे कि सत कौन सी वस्तु है जो हमेशा रहने वाली, असत कौन सी है। तो जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी वहाँ बड़े बड़े लोग राजे के दरबार में पहुँच गए, सभा लगी हुई। राजे की एक शर्त थी कि एक घोड़े की रकाब में पांव डालूं और दूसरा डालने तक मुझे ये पता चल जाए, पर ये मसला कोई भी राजे का हल नहीं कर सका। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बैठे हुए। सत्संग जब अष्टावक्र को पता चला, आप जानते हैं कि अष्टावक्र उसके शरीर में 8 विंग थे, एक विंग भी हो तो इंसान बड़ी मुश्किल चल पाता है, तो 8 विंग थे उसके शरीर में। तो वो उसने कहा कि मुझे ले चलो राजे के दरबार में। उसको उठा के ले आए वेंगी पे। जब राजे के दरबार में पहुंचा तो जितने भी वो बैठे हुए खिलखिल हंसने लगे, कहने लगे लो हम तो राजे के गुरु नहीं बन सके, ये बनेगा जो खुद चल तो सकता नहीं। तो साथ से तो उसने कह दिया एकदम, कहने लगा कि राजन ये चंबार सभा उठा दो। सबको देखकर बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे आप जानते हैं चंबार किसको कहते हैं जो चमड़े की परख करता है। कहने लगे कि चंबार सभा उठा दो। राजे को भी गुस्सा थोड़ा आ गया और जितने भी बैठे उनको भी बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे ये कौन सा पकड़ के ले आए इधर राजे के दरबार में। तो वो साध संगत क्योंकि राजा को चाहना थी उसने हुक्म दे दिया। सब जब बाहर चले गए तो अष्टावक्र ने इशारा दिया, तो जब इशारा दिया कि ये परमात्मा है तो साध संगत राजे का सिर झुक गया। फिर कहा कि इतना ही साध संगत उसको ये जब ज्ञान हुआ तो फिर साध संगत उसने जब सिर झुका दिया तो कहने लगे तन तन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमर ने पापी तरे अनेक। एक घड़ी के सिमर ने कहते हैं अनेकों पापी तर जाते हैं। तो आओ साध संगत ये ऐसा सिमरन जिसको भी मिल जाता है, इसमें शक नहीं, सिमरन तो सब दुनिया कर रही है सुबह से लेकर चार बजे से लेकर सासन रात तक सिमरन होते चले जा रहे हैं। पर सासन कहते हैं एक घड़ी, एक घड़ी आदि से फुनियाद संतन छेती गोष्ठे जो कीनो सुलाभ, एक घड़ी उसका आधा हिस्सा। फिर कहते हैं उसका चौथा हिस्सा जो सिमरन कर लेता है सासन, सिमरन वो कैसे करता है सासन सतगुरु से जान कर कि ये प्रभु परमात्मा है, जैसे आपने जाना कि ये निराकार है। अभी आप इसका सिमरन करते हैं कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। तो ये सिमरन सासनी तो आप देखते हैं सड़कों के किनारे पे बैठे हुए हाथ में कासा पकड़ा होता है, और भी हरिद्वार जब जाने का अवसर मिलता है वहाँ भी गंगा के किनारे में बैठे हुए अनेकों ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं, हाथ में कासा होता है और राम राम एक सेकंड भी जबाह उनकी नहीं रुकती। तो कहे के वो सिमरन कर रहे हैं, उनका सिमरन तो इतना ही है कि मेरे कासे में इस बर्तन में कितने कोई पैसे डालता है, बस उसका सिमरन तो इतना है। तो आओ सत्संग संतों का सिमरन, तो सत्संग ऐसा चलता है कि जैसे कहे दम करारी जो करे तो हाजर हुजूर खुदाए। जैसे सत्संग पर्दा आंखों के आगे ऐसे हम कर लें, ना आप देख सकते हैं ना हम आपको देख सकते हैं ना आप हमको देख सकते हैं, जब पर्दा उठाते हैं आप हमें देख रहे हैं हम आपको देख रहे हैं। इतनी सी देर लगती है कि एक सत्संग इशारे से ही ये सत्संग जितनी भी ये दूरी होती है ये नज़दीकी हो जाती है, जिसको हम बड़ा दूर समझते हैं। किसी को पूछो भगवान कहाँ है, कोई कहता आसमान पे, कोई कहता है किसी गुफा का इशारा देता है, कोई किसी जगह का दे देता है, वो इशारा दे देता है। तो साध संगत जिसको पता होता है वो इशारा की बात नहीं करता, वो एकदम साध संग कह देता है कि हर जगह जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शह में जलवा तेरा हू बहू है। जैसे मेरे सामने माइक पड़ा है तो साध संग रास्ते भी बताने वाले बताते हैं, भगवान को जाने पे ये रास्ता जाना चाहिए वो जाना चाहिए। पर सत्संग मेरे आगे माइक पड़ा है तो मुझे तो रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं इसके पास पहुंचने की, मैं तो केवल इशारा ही दूंगी कि ये माइक पड़ा है। हाँ जो आप बैठे हैं वो सीधे भी आ सकते हैं, दाएं भी आ सकते हैं, बाएं भी आ सकते हैं। तो आओ सत्संगत जो जानता है वो सत्संगत वो जना देता है। तो आओ सत्संगत यही अरदास यही प्रार्थना करें करें कि दातार कृपा करना, ये भक्ति जो दी है हमें इस निराकार प्रभु की, ये भक्ति चली जे चलती रहे, और सत्संग भक्ति देने वाले जो सतगुरु हैं इनका भी नाम हमारी जबान पे इसी तरह ही चलता रहे। सत्संग जी धन्यवाद।